ओम शांति। कितने लोगों को पता है कि ये कहाँ है? ये देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एक ने उठाया, दो ने उठाया, तीन ने उठाया। ये देश जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आइलैंड्स हैं, जिसको वेस्ट इंडियन आइलैंड्स कहते हैं। आपने सुना तो होगा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बहुत फेमस है। लास्ट ईयर उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था। तो ये एक कंट्री नहीं है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। और जो टीम बनती है वो कई कंट्री से मिलकर के बनती है। और त्रिनिदाद टोबैगो की विशेषता है कि बेस्ट क्रिकेटर जो ब्रायन लारा है, उसकी पैदाइश वहां है। वैसे हम उससे मिले हैं कई बार, हम यहाँ पे निमंत्रण देना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। आप सब थोड़ा योग लगाइए, हो सकता है कि वो यहाँ पर पहुंचे तो काफी सेवा हो सकती है। तो बाबा ने मुझे 76 में वहां पर भेजा था। तो मार्च 76 में मैं वहां गई थी। जैसे कल की मुरली के अंदर बाबा ने मेंशन किया है अंकल और आंटी का नाम, ना? कितने लोगों ने देखा है उनको? सिर्फ एक दो लोगों ने देखा है। तो अंकल और आंटी उनको इसलिए बोलते हैं कि उनके सब बहन भाइयों के बच्चे भी उनको अंकल बोलते थे या उनको आंटी बोलते थे। तो हम लोग सब भी आंटी अंकल बोलने लगे। फिर बाबा के सामने आए तो बाबा ने भी आंटी अंकल बोला, तो वर्ल्ड के फेमस आंटी अंकल हो गए। तो जब हम गयाना में पहुंचे थे सेवा करने के लिए, तो आंटी की फैमिली सबसे पहले जो है जयंती बहन वहां गई थी। उसका कारण ये था कि कुछ लोग वहां के, यहाँ पे उनका कनेक्शन तो बहुत होता है, लंदन से होता है या अमेरिका में बहुत वेस्ट इंडीज या गयाना के लोग, त्रिनिदाद के लोग वहां पे रहते हैं। तो एक साई बाबा के सत्संग में उन्होंने जयंती बहन को देखा था और उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो जयंती बहन और उनके साथ में एक लता बहन थी सूरत की, तो दोनों को भेजा गया था क्योंकि वहां पर भक्ति भावना बहुत है, बहुत सारे मंदिर हैं और भक्ति बहुत करते हैं, गीत इतना अच्छा गाते हैं। अभी कोई यहाँ पे है नहीं, एक बहन है वहां पर पांडव भवन में, आप अगर उसका सुनेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वो वहां के है, इतना अच्छा गीत गाते हैं। तो वहां पर हम गए तो पहले तो जयंती बहन गई और फिर लता बहन सूरत की थी, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है, वो गई थी क्योंकि वो थोड़े शास्त्रों में थोड़ी अच्छी थी समझाने में। और उसी बहाने में ये हमारे अंकल आंटी भी, आंटी निकली उनके बच्चे निकले, उन्होंने ज्ञान अच्छी तरह से समझा। और अंकल की बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं आया लेकिन वो मददगार थे हर चीज के अंदर, मददगार, हम लोगों की देखरेख करना, इतनी अच्छी देखरेख हम लोग की करते थे कि हमें घर से बाहर पैर भी रखने का नहीं है, पैरों से नहीं जाने का है, अंदर ही कार भेजते थे गैराज में ही, वहां से हमें निकलना है और वहां पर ही हमें जाना है। और हमेशा जो है फ्रेश वेजिटेबल मंगा के रखते थे, लेके आते थे हफ्ते में दो बार। तो पुराने वेजिटेबल जो होते थे फ्रिज में से निकाल के ले जाते थे और वो अपने नौकर वगैरह को दे देते थे, क्योंकि वो उस समय जो है मिनिस्टर ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग थे वहां पर जब हम गए थे। तो इस प्रकार के उनको कोई भी चीज जो थी, उनको ऐसा लगता था कि भगवान का घर है, ये भगवान के बच्चे हैं, ये देवी देवताओं के रूप में आए हैं। हम लोग को इस प्रकार से वो देखते थे, कोई भी पुरानी चादर या कोई भी पुरानी चीजें हमें नहीं देते थे। और सब चीजें फ्रेश चाहिए और सब चीजें अच्छी चाहिए। उनका ये कहना था कि भगवान का घर हमारे से भी अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा भी कोई फर्नीचर वगैरह कोई टूट जाता है या थोड़ा पुराना हो जाता है, उसको उठा के ले जाते थे और नया उसमें डाल देते थे। तो मतलब कि इतने दूर कहें हम, इतने दूर रहते हुए भी जैसे बाबा के इतने अच्छे बच्चे निकले जो कि सारी दुनिया के अंदर सर्विस के माध्यम बने। और वहां पर जाने के जब गए हम 76 में, तो हर जगह सब छोटा छोटा ही था। लंदन भी छोटा था, वहां पर भी बहुत छोटे छोटे सेंटर थे। और उन्होंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया कि अगर हमें विश्व की सेवा करनी है तो यूनाइटेड नेशन में ज्वाइन करना है हमें। तो उनके द्वारा ही यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग ज्वाइन किए और उनकी लड़की ही एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में वहां पर गई थी, वो अभी भी है, गायत्री बहन बोल करके। वो हमको रिप्रेजेंट करती है, ब्रह्मा कुमारी इसको यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करती है। तो यूनाइटेड नेशन से कई प्रकार के प्रोग्राम बने। एक तो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जो था, जो 86 में पीस ईयर था, वो ईयर जो था पीस ईयर था, तो उसके अंदर मिलियन मिनट्स, मतलब कि हमें मिलियन मिनट्स की शांति जो है हमें कलेक्ट करनी है। तो कहीं कहीं जगह तो बहुत ज्यादा हो गई, मिलियन तो बहुत कम है। हमारे पास भी 3-4 मिलियन हो गए थे। पॉपुलेशन हमारी सिर्फ 1.2 मिलियन है, लेकिन 4-5 मिलियन पीस के मिनट्स, इतने फोन जैसे लगे हुए थे, हर 10 मिनट में कोई ना कोई फोन करता था, हम इतना दान करना चाहते हैं, 10 मिनट दान करना चाहते हैं, 20 मिनट दान करना चाहते हैं, 30 मिनट दान करना चाहते हैं, हम पीस के बारे में आपको कहानी लिख करके देना चाहते हैं, कविता लिख करके देना चाहते हैं, उसके लिए प्रोग्राम हम लोग सॉन्ग बनाएंगे, हम एक चाहते हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम हो जिसमें हम सब आर्टिस्ट मिलकर के 2-3 घंटे का पीस का प्रोग्राम हम बनाएं। तो ऐसे कई प्रकार के निमंत्रण मिलते थे वहां पर, और सब जगह पे बहुत अच्छी सेवा हुई थी, मिलियन मिनट्स की सेवा। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड की भी सेवा हुई। तो यूनाइटेड नेशन से काफी लोगों की सेवा हुई। और जैसे कल बाबा ने बताया कि उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी यहां पर आए थे कॉन्फ्रेंस में 83 में, या कुछ ऐसे ही समय पे आए थे वहां पर। तो काफी VIPs जो है वो यहां पर भी आए हैं और दूसरी जगह पे भी गए हैं। तो इस प्रकार की जैसे वर्ल्ड की सर्विस भी हुई थी। और बाबा ने ये कहा कि गयाना से अमेरिका की सर्विस हुई। एक तो यूनाइटेड नेशन की सेवा हुई, और दूसरा क्या है कि जब किसी कभी भी सेंटर हम खोलते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हालांकि कुछ स्टूडेंट वहां पर थे। प्रॉब्लम यह होता है कि अगर हम मकान ले लेते हैं तो वो कमिटमेंट करना, नहीं कमिटमेंट करना मतलब किराया उसका भरना, बहनों की सेवा करना, या कुछ भी चाहिए तो उनको देना, तो शुरू शुरू में भारी लगता है। कहीं पर भी आप देखेंगे शुरू शुरू में भारी लगता है, लेकिन जब एक बार हो जाता है। तो एक युक्ति निकाली थी कि उसने अपने इन्फ्लुएंस से, मतलब कि गवर्नमेंट में होने के कारण, उनकी लड़की को स्कॉलरशिप दिलवा करके अमेरिका भेजा। और जब अमेरिका भेजा तो उनको कहीं तो रहना पड़ेगा ही, तो उन्होंने सोचा कि एक बेडरूम हाउस के बदले 2 बेडरूम हाउस का मकान ले लेंगे। और फिर और भी वहां के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी मदद की। तो मतलब कि उन्होंने बड़ा मकान ले लिया, उनकी लड़की रहती थी, वो पढ़ने के लिए जाती थी। तो इस प्रकार जैसे थोड़ा हिम्मत करने से सब लोग सहयोगी हो जाते हैं, फिर कोई सहयोग के अंदर कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इस प्रकार बाबा हमेशा कहते हैं कि अमेरिका की सर्विस भी गयाना से हुई। गयाना भी करेबियन, वेस्ट इंडीज से वहां पर से जो आते हैं, श्रवण एक नाम है उनका नाम, वो लोग तो अपने तरीके से प्रोनाउंस करते हैं क्रिकेट टीम में, लेकिन श्रवण बोल के एक था और एक सम पॉल कुछ ऐसा था। तो इस प्रकार से वहां पे सर्विस ही, और हम लोग भी जब वहां गए तो हमें कोई मुश्किलात नहीं हुई उस प्रकार से। क्या मंदिरों में जाते थे, सुनाते थे, फिर उसके बाद जो है हम लोग वीआईपी की सर्विस भी करते थे, प्राइम मिनिस्टर वहां का, प्रेसिडेंट वहां का, उनकी सेवा करने में भी बहुत ही सहज हो गया था वहां पर, और जैसे कि एक फैमिली की तरह हम रहते थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर प्रकार की फैसिलिटीज, हर प्रकार की सेवा वहां पर चलती थी। फिर उसके बाद ये सोच चला कि सिर्फ एक ही कंट्री में तो सेवा करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो दूसरे दूसरे देश में भी जाएं। तो उस समय शुरू में हम लोग 3 कंट्री और हमने कवर किया, उसमें एक सूरीनाम, आपने सुना सूरीनाम का नाम, वो सूरीनाम ही ऐसी कंट्री जिसमें हिंदी नाम है, सूरीनाम मतलब कि सूर्य जहां से निकलता है वो सूरीनाम, हाँ सूरीनाम। तो वहां पर सेवा हुई, वहां पर ही एक ही जगह है जहां पर हिंदी बोली जाती है और डच उनकी लैंग्वेज है, और हिंदी में भी वो लोग इतना सॉन्ग करते हैं, इतना डांस करते हैं, इतना मतलब कल्चर जो है, खान पीन का भी कल्चर वहां का इंडिया जैसा है जैसे मॉरिशस में है, ऐसा है जैसे कि यहाँ पर हम लोग चना बनाते हैं तो वो भी लोग चना बनाते हैं यहाँ पे, वहां पे पम्पकिन बहुत होता है, क्या बोलते हैं पम्पकिन को, हाँ पीला वाला, हाँ पेठा बहुत मिलता है तो वो बहुत बनाते हैं। बैंगन का, यहाँ पर बैंगन का भरता बोलते हैं, वहां बैंगन का चोखा बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो है बिहार के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं। यहाँ पे हम लोग सिंगी बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, वहां पर साइजान बोलते हैं, आपने सुना है साइजान का नाम, बिहार में शायद बोलते होंगे, बिहार और यूपी में साइजान बोलते होंगे। तो इस प्रकार टमाटर का चोखा बोलते हैं, पोटेटो का चोखा बोलते हैं, चोखा मतलब हम लोग भरता बोलते हैं और वो लोग चोखा बोलते हैं। वहां पर दिवाली जो है, होली दिवाली इतनी अच्छी तरह से मनाई जाती है जिसमें कि न केवल इंडियन लोग भाग लेते हैं लेकिन वहां के नॉन इंडियंस भी भाग लेते हैं। दो प्रकार के लोग मुख्य है, एक है इंडियन बैकग्राउंड के लोग जो यहां से 150-170 ईयर्स के पहले गए थे और वहां पर बस गए हैं, और उनको समझा बुझा के पता नहीं कैसे लेके चले गए, इतना दूर लेके चले गए उनको काम करने के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और अफ्रीकन लोग भी वहां रहते हैं, गवर्नमेंट कहीं पर अफ्रीकन गवर्नमेंट मेन है, कहीं पर इंडियन गवर्नमेंट मेन है, तो इस प्रकार से वहां पर बहुत चलता है। जमैका भी है, ग्रेनेडा है, बारबेडोस है, ट्रिनिडाड टोबैगो है, सेंट मार्टिन है। अभी आपने सुना होगा कि वहां के 3 कंट्री के अंदर 90% डैमेज हुआ है, हरिकेन सुना आपने न्यूज में, सेंट मार्टिन, पोर्टोरिको और एक डोमिनिका, ये 3 कंट्री तो जैसे कि पूरा ही विनाश हो गया। लोग नहीं मरते हैं क्योंकि लोगों के लिए तो पहले से उनको बताते हैं कि किस प्रकार से सेफ्टी रखनी है, कई स्कूल को जो है वो शेड में बदल देते हैं, अगर घर आपका कमजोर है तो आप बड़े बड़े स्कूलों में जाकर के रह सकते हैं एक रात के लिए या 2 रात के लिए। तो इस प्रकार से वहां पर मनुष्यों की क्षति नहीं होती है, सिर्फ चीजों की नुकसान होता है बहुत, जो है टिन जो होती है वो ऐसा उड़ जाती है जैसे पेपर से, ऐसा पेपर हो जाता है, खिड़कियां दरवाजे टूट जाते हैं और पानी अंदर घुस जाता है और इतना जबरदस्त आवाज आता है जैसे कोई शैतान, काला शैतान या भूत आपकी तरफ आ रहा है और आपको खा जाएगा, जैसे इतनी आवाज होती है, इतना कलर भी, पूरी लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं वो लोग, तो इतना जबरदस्त वो कालापन दिखाई देता है। और फिर उसके बाद जो है मकान गिरने लगते हैं, 3 उतर उतर जाने लगती है, झाड़ वगैरह टूटने लगते हैं और उसके ऊपर गिरने लगते, बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है वो गिरने लगती है। तो मतलब कि जो वहां पर रहता है और जिसने अनुभव किया है वो उसको सिर्फ जो है बाबा की याद में बैठना पड़ता है और कभी भी मौत हो सकता है ऐसा सोच करके, कभी भी कोई भी चीज की हानि हो सकती है वो समझ करके, कि हमको तो परम धाम में जाना है कहीं नहीं जाना है, ये सोच करके बैठना होता है। इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है हमें भी, जब भी हम इंडिया में आते हैं, जब भी वो सीजन चलता है तो हमें भी प्रैक्टिस हो जाती है जीते जी मरने की, कोई डर नहीं होता है, फियरलेसनेस आ जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। तो इस प्रकार वहां पर अभी तीन कंट्रीज, हाँ मैंने तो देखा है ना, देखा क्या, दो हरिकेन हमने देखे हैं, तो दो हरिकेन के अंदर जो है बाबा की याद से जो बैठे रहते हैं हम लोग, अपने को सेफ करते हैं, पानी रख देते हैं, खाना रख देते हैं, खाने के जो है वो रहता है, पानी रख देते हैं, कैंडल रख देते हैं। और हमारे पास तो उस समय जिस देश में मैं एक जगह थी, तो जब ऐसे छोटा सा ही मकान लिया हुआ था और उसके बाद ही हरिकेन आ गया, तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं था अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बाबा ने सबको प्रोटेक्ट कर दिया। बैटरी भी नहीं थी हमारे पास, एक बैटरी थी, एक जैसे टॉर्च लाइट में दो चार बैटरी जितनी लगती है उतना ही था, अभी पता नहीं एक महीने तक लाइट नहीं आएंगी या 15 दिन तक लाइट नहीं आएंगी। तो एक किसी ने हमको एक गिफ्ट दी थी, हरिकेन टॉर्च लाइट, उसमें क्या होता है कि बैटरी से भी चलती है और दिन के अंदर सन में भी रख दो तो सनलाइट से भी चलती है, और तीसरा जो है हाथ से घुमाते रहो, तो हम लोग घुमाते रहते थे उसको, क्योंकि दूसरी बैटरी बचानी है हमको, तो घुमाते घुमाते काम चलता। इतना मजा आया मेरे को तो, पहले में मैं डर गई थी, पहला वाला जो था 80 में कुछ हुआ था उसमें मैं डर गई थी, थोड़ा डर लगा था, लेकिन जब दूसरा हुआ तो मुझे कोई डर नहीं लगा, वो ज्यादा स्ट्रांग था, जो दूसरा वाला था ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ था जो अभी दूसरे कंट्रीज में है। हमारी दोनों कई बहनों ने तो इतना अनुभव किया कि कबर्ड के अंदर 8 घंटा घुस गए थे, कबर्ड में जैसे होता है ना सीमेंट का होता है ऊपर और नीचे होता है, कबर्ड में 8 घंटा वो लोग वहां अंदर बैठे रहे जब तक हुआ, क्योंकि सारा फर्नीचर बड़े बड़े टेबल चेयर भी जो है वो हवा में उड़ने लगे, जैसे हवा में उड़ते वैसे उड़ गए, सारी छत गिर उड़ गई, तो वो बेचारी 8 घंटा 10 घंटा एक छोटे से उसमें रही, तो ऐसा 12 घंटा 14 घंटा तक ये कार्य चलता है। तो ऐसे स्थानों पर बाबा ने हमको सर्विस के लिए भेजा है। पॉपुलेशन वहां की सब छोटी है लेकिन टूरिस्ट बहुत आते हैं, हजारों की संख्या में अमेरिका से यूरोप से टूरिस्ट आते हैं हर कंट्री के अंदर। पहले तो इतना कुछ नहीं था, जब इंडियन लोग भी वहां पर गए थे तो उन्होंने समझा भी नहीं था कि क्या करने के लिए जा रहे, उन्होंने समझा कि बहुत पैसा वहां पर मिलेगा इसीलिए जा रहे, लेकिन जब गए तो फॉरेस्ट था, मतलब कि बोट से अब दिखाई, 3 महीने लगे उनको जाने में, तो समझ सकते हैं कि क्या उनके ऊपर बीता होगा। तो वहां पर जाने के बाद जंगल दिखाई दिया और जंगल को मंगल बनाने का था उनको, तो मेहनत करके दोनों, मतलब अफ्रीकन लोग इतने मेहनती नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने भी काम किया और इंडियन लोगों ने भी काम किया और उसी जंगल को मंगल बना दिया। और फिर उसके बाद तो काफी देशों के अंदर कहीं में सोना निकला, कहीं में मतलब कि पेट्रोल निकला, त्रिनिदाद टोबैगो में पेट्रोल है और वेनेजुएला में इतना पेट्रोल मिलता है कि $2 US के अंदर आपको 10 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल मिल जाएगा, पानी से भी सस्ता पेट्रोल है वहां पर, पानी की बॉटल भी महंगी मिलेगी, 5 लीटर की बॉटल भी महंगी मिलेगी, और 10 लीटर जो है पेट्रोल जो है वो उससे भी सस्ता मिलता है वहां पर, मतलब वो एक दूसरा देश है, हमारा वाला नहीं है, दूसरा देश है। तो इस प्रकार से सब जगह जाते हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, लंदन को वहां पर भेजते थे लंदन में पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ के भी वो हो गए, सब कुछ हुए, अब बाबा का ज्ञान आया, बाबा के ज्ञान में भी आए, फिर भक्ति करते थे। थोड़ा सा हमें ऑब्स्टिकल जरूर हुआ वहां पर, थोड़ा विघ्न आया, वो विघ्न ये था कि वहां के जो पंडित लोग थे ना, पहले तो उन्होंने बहुत हमारी रिस्पेक्ट दी, बहुत सब मंदिरों में आना, सब करना, संदेश देना, ये करना, लेकिन उन्होंने कुछ किताबें भी पढ़ी थी, तो जैसे कि भक्ति मार्ग के अंदर तो देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं ना, जैसे कृष्ण को भगवान मानेंगे या राम को, राम की बहुत भक्ति होती है वहां पर, रामायण का पाठ बहुत होता है। तो पहले तो वो लोग तो समझते थे कि हम वही भक्ति और यही उसको प्रमोट करने के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि हम कृष्ण को, राम को भगवान नहीं मान के शिव को ही भगवान मानते हैं, तो उस समय थोड़ा हमें ऑब्जेक्शन मिला था उनसे। वो लोगों ने गवर्नमेंट तक भी अप्रोच किया था और हमको निकालने की भी कोशिश की थी। समझते थे कि हम तो छोटे छोटे कुमारियां हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम तो छोटे छोटे कुमारी नहीं हैं, हमारे पीछे तो बाबा है, तो बाबा ही सब कराता है। तो बाबा ने हमको वहां पर बहुत सेफ रखा, काफी उन्होंने कोशिश की, मतलब कि लाइफ डेंजर भी था थोड़ा सा, लेकिन उस लाइफ डेंजर को भी हमको बाबा ने प्रोटेक्ट करके वहां पर रखा। क्योंकि क्यों रखा, क्योंकि बाबा के बच्चे थे वहां पर, तो बाबा के बच्चे यहाँ आते थे, सुनते थे, और जो भी बच्चे सुनते थे वो बहुत सीरियस, क्योंकि वहां का खान पान हार्डली लोग वेजिटेरियन होते हैं, इंडियन लोग भी वेजिटेरियन नहीं होते हैं, मतलब कि 2% 3% वेजिटेरियन होते हैं, बाकी जब जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं और शराब पीना उनका काम है, काफी डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। लेकिन उस धरती से भी जैसे बाबा कहते हैं कि सभी पर्दों से निकल करके बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो यही बड़ी विशेषता है कि इतना दूर रहते हुए भी हमको वहां से आने के लिए, जब हम वहां से घर से निकलते हैं, बाबा के घर से निकलते हैं और यहाँ बाबा के घर में आने के लिए 50 घंटा लग जाता है, और यहां से जब हम मधुबन से निकलते हैं वहां तक पहुंचते हैं तो भी 50 घंटा लगता है। उसके अंदर जो है हमारी फ्लाइट जो है वो समझो कि 22 घंटा 23 घंटा होती है, बाकी कार में इधर से जाना, कार में उधर से जाना, बीच में रुकना पड़ता है, एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है, अगर ज्यादा समय होता है तो सेंटर पे जा सकते हैं ज्यादा समय, अब 8-10 घंटे के लिए कौन जाएगा सेंटर पे, उनको वापस आना पड़ता है। ये ऐसा तो नहीं है बहुत इजी, अमेरिका में सब लोग काम करने वाले होते हैं तो उनको बुलाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या सीधा ही चले जाते हैं, 50 घंटा लगे 40 घंटा लगे कुछ भी हो सीधा सीधा जाते रहते हैं, स्टॉप करते जाते हाँ। ये दो तरीके से हम जा सकते हैं, एक लंदन के द्वारा जा सकते हैं और एक अमेरिका के थ्रू जा सकते हैं, लंदन से डायरेक्ट होता है, उसमें 10 घंटा होता है, और ये जो है 14 घंटा की फ्लाइट, और न्यूयॉर्क के 14 घंटा से 16 घंटा तक अगर बीच में रुकना पड़े, दिल्ली में रुकना पड़ता है, कहीं बॉम्बे में, कहीं भी मिडिल ईस्ट एयरलाइन में आते हैं तो दुबई में या दूसरी जगह पे रुकना पड़ता है 4-5 घंटे 8 घंटे कभी, तो वो टाइम हो जाता है। तो दो जगह से हम लोग इजीली हम जा सकते हैं वहां पर, लेकिन हमारे पास जो वहां पे ज्ञान में चलने वाले हैं, चलो अभी तो जो पुराने हैं, कितने साल हो गए हम लोग को सेंटर खोल के वहां पे, 1976, तो 40 से भी ऊपर हुआ ना, 41 ईयर हो गया है, हा? तो 41 ईयर है, तो जो छोटे यंग लोग आए थे अभी तो 40 इयर्स के बाद वो भी बूढ़े हो गए होंगे, 70 इयर्स 80 इयर्स के हो गए, लेकिन वहां पे ये विशेषता है कि यंग लोगों को काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि जब जाते हैं स्कूलों में, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो बोलेंगे तुम्हारे कितने भगवान हैं, ये है वो है, हमारा तो एक ही भगवान है, हम तो एक क्राइस्ट को ही मानते हैं, हमारा तो एक ही बुक है, आपका तो इतने बुक्स है, इतने देवता दे, आप किसकी पूजा करते, किसको भगवान मानते, तो वो इस बारे में क्यूरियस होते हैं कि भाई हमको भी मालूम करना चाहिए। तो जो भी आते हैं और समझ लेते हैं बाबा का ज्ञान, उनों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन देख करके हम लोगों को भी लगता है देखो कितने दूर रह के भी बाबा को पहचान लिया है, पर्दों के अंदर भी, पर्दों को भी बाहर करके बाबा को पहचान लिया है, ऐसा हम समझते हैं वहां पर। तो बाबा की सर्विस भी ठीक चलती है वहां पर, कई सेंटर तो हमारे बहुत बड़े बड़े भी हैं, हमारे पास 12 लाख की पॉपुलेशन है लेकिन चार या पांच बड़े सेंटर है। एक बड़ा सेंटर तो इतना बड़ा है जिसमें कि 500-600 लोग को हम बिठा सकते हैं हॉल में, और 30-40 बेड का मकान है जहां मैं रहती हूँ, लेकिन रहने वाले बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है, काम करने वाले रहने वाले। बड़े बड़े हम लोग रिट्रीट सेंटर को सिर्फ 10 या 12 लोग से चलाते हैं, इतने कम लोगों से चलाते हैं क्योंकि वहां पर मैन पावर इतना ज्यादा नहीं होता है। मशीनों का थोड़ा पावर हो जाता है तो मशीनों से काम चल जाता है, लेकिन मैन पावर की बहुत कमी है वहां पर। कुछ भी करना होता है, लेबर को भी कुछ देना होता है, तो कम से कम मिनिमम हमको 2,000 रुपीज के इक्वलन देना पड़ता है रोज का उससे भी ज्यादा कभी देना पड़ता है सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है वहां पे, मैन पावर कम होने की वजह से लेबर भी बहुत महंगा मिलता है। लेकिन मेन थिंग है कि वहां की जो आबहवा है एकदम क्लीन है। जैसे यहाँ पर पहाड़ों पर जाते हैं क्लीन हवा लेने के लिए, बहुत ग्रीनरी होती है। तो जब से मैं गई हूँ मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम मिनिमम है वहां पे जाने के बाद। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि पॉपुलेशन कम है तो सब चीजें कम होंगी, पोल्यूशन नहीं होता है, ग्रीनरी होती है, समुद्र का किनारा। हाँ, नो इट्स नो 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 इट्स अ वार्म कंट्री, ट्रॉपिकल। हाँ, मॉरिश वेदर है, और जो है समुद्र का किनारा है। जब भी जाओ समुद्र में डुबकी लगाओ सारे पाप खत्म हो जाते हैं। पाप नहीं खत्म होते हैं लेकिन जो है गंदगी खत्म हो जाती है, कीटाणु खत्म हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, तो वो भी मजा। हाँ, मैं तो मधुबन इंडिया जाने के बाद तो मैं जरूर जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के इन्फेक्शन हम ले लेते हैं, तो वहां जाके सीधा डुबकी लगा देते हैं तो कई प्रकार के इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपके जो है वो सफाई हो गई है आपके, मतलब उस प्रकार की नहीं, पापों की नहीं, लेकिन ये कोई वायरस या वो लेते हैं तो उसकी सफाई हो जाती है, ऐसा हमको महसूस होता है। तो वहां पर जाने के बाद हमने तो बहुत सीखा है, क्योंकि पहले तो कई लोग पूछते हैं कि आपके टीचर कौन है, आपको ट्रेनिंग देने वाला कौन है। हम तो सीधा यहाँ से गए, पढ़ाई किया, एक दो साल प्रैक्टिस किया, मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो प्रैक्टिस किया, फिर सीधा दादी ने हमें वहां भेज दिया क्योंकि उस समय लोग कम थे, डेडिकेट इंग्लिश जानने वाले जो है बहुत कम थे, तो सीधा हमें वहां भेज दिया, बोला कि आप दोनों भी कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन उसके लिए दूसरे के लिए मुझे उतना टाइम नहीं मिला। लेकिन वहां पर यहां पर हम लोग कितने लोगों के साथ रहते हैं, 5-10 लोग तो एक सेंटर पे रहते ही होंगे। वहां जाकर के अकेले इतना डिफरेंस हो गया हमारा, अकेले रहना है इतने बड़े मकान में, 3 मंजिल का मकान अकेले रहना है, या कभी कोई टेम्पररी हमारे पास आके सो जाते थे रात में, बाकी तो अकेले खाना, अकेले बैठना, अकेले मतलब बाबा के साथ ही सब कुछ करना है हमें, तो इस प्रकार। और सब कुछ करना है मतलब सब कुछ करना है, कोई खाना बनाने के लिए तो शुरू शुरू में तो हम ही कोई खाना बनाना पड़ता है ना, कोई तो ब्राह्मण नहीं होते तो हम लोग को खाना भी बनाना है, खाना खिलाना भी है, साफ सफाई भी करनी है, झाड़ू पोछा भी करना है, और ये अपने कपड़े वगैरह भी धोना है, सब कुछ करना पड़ता था पहले तो। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इतना चेंज होने के बाद भी बाबा की याद से सब कुछ हो जाता है। तो ये सब हमने जो है वहां पर ही सीखा है। यहां तो मैं छोटी सी कॉकरोच भी आता था तो मैं डर जाती थी, वॉल के ऊपर थोड़ी वो चिपकली वगैरह घूमती है तो मैं डर जाती थी, सांप निकलता है तो डर जाते थे। वहां तो ये चीजें कॉमन है, सांप भी कॉमन है, यार्ड में जाओ कभी कभी सांप भी दिखाई देता है, ये छोटी छोटी चीजों से डर नहीं लगता। यहाँ पे डर लगता था बहुत, लेकिन वहां पर जाने के बाद ये चीजों से डर नहीं लगता है, और ये फीलिंग आ जाती है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स की फीलिंग आ जाती है, तो वो अपने रास्ते पे चले जाते हैं, हम अपने रास्ते पे चले जाते हैं। कोई हमको आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है किसी प्यार का, मतलब कि न काकरोच से न किससे भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कुछ काट लिया है या सांप ने काट लिया है या किसी ने काट लिया, हमको कुछ प्रकार का कोई डर भी नहीं है। अभी डर भी खत्म हो गया है, ये भी डर नहीं लगता कि चोर आ जाएंगे तो क्या होगा। ये हम तो ये समझते हैं कि हम बाबा के बच्चे, बाबा को अगर हम प्रोटेक्टर कहते हैं तो हम बाबा के बच्चे मास्टर प्रोटेक्टर हुए ना, और अगर हम मास्टर प्रोटेक्टर हुए और हम डरने लगे तो कैसे दूसरों की मदद करेंगे, यही लगता है। अभी देखो एक हरिकेन आता है तो सारी कंट्री जो है हिल जाती है, उनको तो ज्ञान नहीं है, हिल जाती है। और उस कंट्री के अंदर आप ही एक अकेले बाबा के बच्चे, जिसको हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरियल फॉर्म, साकार में तो हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट है बाबा के, तो आप कैसे डर सकते हैं। आपको तो मतलब डर होगा तो भी डर को खत्म कर देना होगा, क्योंकि हमको क्या है कि शक्ति देनी है, हमको पैनिक नहीं होना है। तो वहां पर जाने से मुझे कई प्रकार के डर, कई लोग कहते हैं ओ ये कंट्री में आप जाते हैं, ये कंट्री में रहते हैं, क्राइम आपको नहीं लगता है कितना वहां पर, कितनी क्राइम है, एक दूसरे को मार देते हैं, ये कर देते हैं, खास करके जमैका का नाम बहुत बड़ा है, और हमको वहां पे डर नहीं लगता है, वहां पे भी डर नहीं लगता है। क्योंकि एक बार हम एक सपना आया हमारे को, शायद मेरे को थोड़ा सा डर था, अपने लिए नहीं था लेकिन दूसरी बहनों के लिए था कि भाई हमारी जो बहनें हैं सेंटर पे अकेली रहती है, इतनी क्राइम कंट्री है, तो मेरे को थोड़ा मन के अंदर भावना थी कि भाई ये बहनों की कैसे रक्षा होगी, और ये तो यंग बहनें हैं, मतलब कि यंग लोग होते हैं। तो एक बार मुझे सपने आया कि मैं जैसे कि वहां पर जमैका के क्लासरूम में हूं और मैं कोई स्टूडेंट को एक्सपेक्ट कर रही हूं, मतलब वो आने वाले थे, तो मैं जैसे झाड़े करके कुर्सी वगैरह ठीक कर रही हूं, पहुंच रही हूं, ऐसे कर रही हूं। और जैसे ही मैंने क्लासरूम की तरफ, जहां बाबा का पिक्चर होता है, उधर तरफ देखा तो वहां पे बाबा का पिक्चर नहीं था, उसकी जगह पे एक दरवाजा था, और दरवाजे के अंदर से एक बहुत लंबा चौड़ा काला आदमी उसके अंदर से आया, भयानक आदमी आया। उसके हाथ में गन थी, वो गन मेरे को पॉइंट आउट करता था। मतलब बाबा ने कैसा उसका डर निकाला मैं बता रही हूं, तो गन पॉइंट करता था और मैं, समझे आप, वो ऐसा बंदूक मेरी तरफ करता था। तो फिर मैंने उसको, मेरे मन में तीन संकल्प आए उस समय। एक संकल्प ये आया कि आप जो है मेरे फादर के लड़के हो और मैं जो हूं आपके फादर की लड़की हूं, नहीं रिलेशन हो गया ना हमारा, तो आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो ये तीन संकल्प आए मेरे मन में, और तीन संकल्प आते के साथ में उसने गन ऐसे करने के बजाय ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद मैं जो है खड़ी हुई थी, क्योंकि सफाई वगैरह कर रही थी, तो जैसे खड़ी हुई थी तो सीधा मैं जैसे धीरे 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 करके मैं बैठ गई और बाबा की याद में जरा ज्यादा रहने लगी। वो क्या था, वो भाई जो था ना, वो मेरे नजदीक आने लगा, थोड़ा और नजदीक आने लगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं इसको मन में क्या है, वो थोड़ा संकल्प चला, थोड़ा डर भी आया मेरे को। फिर उसके बाद वो नजदीक आकर के 6 फीट दूर मतलब बैठ गया, जैसे चर्च में बैठते हैं ना घुटनों के बल, तो ऐसे बैठ गया और मेरे को देखने लगा। मैं तो बाबा की याद में बैठी थी, मेरे को देखता था वो, तो देख देख करके बोलता है। फिर उसने बोला देखो आप जो है अवर फादर, मतलब आपका फादर मेरा फादर एक ही हुआ, तो मेरे हमारे फादर के द्वारा आपको जो शक्तियां मिल रही है वो मुझे नहीं पता है कि कैसे देना है। अगर आप अपनी थोड़ी सी शक्ति मुझे दे देंगे तो मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। कितनी अच्छी बात बोली उसने ना। तो फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई। उसके बाद मेरे को उन उस प्रकार की आत्माओं के प्रति इतना प्यार, इतना जैसे मर्सी जिसको कहते हैं दया भाव इतना मेरे प्रति निकला। मैंने कहा कि ये जो खराब काम करने वाले होते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर शक्ति नहीं है इसीलिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद से हर किसी को मैं देखती थी उस कंट्री के अंदर, तो वो प्रेम और वो दया भाव इतना होता था कि मैं पूछ नहीं सकती। तो एक बार मैंने कहा चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके करती हूँ उसके ऊपर कि क्या मेरा असर किसी के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे वो कहते हैं कि योग का प्रयोग, तो मैं 4 बजे के योग के बैठ में बैठती थी और उसके बाद 5-5:30 बजे ना अभी अंधेरा ही होता था वहां पर, 6 बजे जो है वो चांदनी हो जाती है उजाला, लेकिन 5 बजे 5:30 बजे 5:45 बजे मैं चलने लगती थी वहां पर, वॉकिंग के लिए जाती थी। कुछ लोग बोलते थे आप वॉकिंग के लिए इतना जल्दी क्यों जाते हैं, अभी स्ट्रीट लाइट भी है। और लोग जो है वहां पर से बड़े बड़े घर थे लेकिन फिर भी जो है काम करने वाले जो कटलास होती है ना नाइफ जैसा होता है जैसे घास काटते वो पेपर में लपेट करके वो निकलते थे काम पे, और मैं उनको ये बोलती गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते थे गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू। किसी को भी जब हम देखते थे तो हम उनको गुड मॉर्निंग कहते थे और बोलते थे कि गॉड ब्लेस यू, तो सब लोग उसका रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू, और ऐसे हम 2-4 चक्कर लगा के हम वापिस आ जाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम देरी से जाते थे, समझो देरी हो जाती थी 10-15 मिनट के, वो लोग रुकते थे रोड के ऊपर और फिर जब तक वो गॉड ब्लेस यू नहीं कहते थे तब तक वो नहीं जाते थे। हा? मतलब असर हुआ ना। एक भाई था वो वॉचमैन का काम करता था, तो मैं एक बार गई तो मेरे को देखा नहीं, दोबारा गई तो मेरे को देखा नहीं, तीसरी बार मैं जाने लगी तो उसने देखा मुझे, गुड मॉर्निंग सिस्टर यू डिड नॉट टेल मी गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू, मेरे को आज जो है मेरे को कोर्ट में जाने का है, मेरे को ब्लेसिंग लेके जाओ भी। तो ब्लेसिंग मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, कर्मों के हिसाब से ठीक होगा नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है गॉड ब्लेस यू फॉर वो या कोर्ट केस। तो फिर 3 बजे वो हमारे पास आया खास बोलने के लिए कि हमारा काम हो गया है। तो कहने का भाव कि कई लोग समझते हैं कि 7 दिन का कोर्स कराओ तभी सर्विस होती है, स्टूडेंट बनाने से ही सर्विस होती है, वो तो होती है, ब्राह्मण तो बनाना ही है, बिगैर ब्राह्मण के तो फाउंडेशन बनती नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी तो ऐसी कई सर्विसेस हैं जो हम करते हैं उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ता है। सारी दुनिया तो ब्राह्मण नहीं बनेगी ना, तो इस प्रकार जहां भी हम गए वहां पर इस 2 फीलिंग की वजह से कि एक तो प्यार और एक मर्सी, जिससे कि हमको ये लगा कि ये लोग गलत काम इसलिए कर रहे हैं कि इनको जो है आज तक उस कंट्री के अंदर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम जाते रहते हैं, कार से भी जाते रहते हैं, बसों में भी जाते रहते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हम सब काम करते हुए भी कोई ने हमारा डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड नहीं किया है। ये जैसा कि बाबा का प्रोटेक्शन है कि हर जगह हम जाते हैं तो यही हमको, तो ये कंट्रीज हमको फियरलेस बना दिए है, कहां भी जाते हैं तो डर निर्भय बना दिए है कंट्री। मेरे को ये बहुत मतलब कि बाबा की ब्लेसिंग लगती है कि मैं छोटेपन में कितनी डरती थी, ज्ञान में आने के बाद भी इतना डरते थे और वहां जाकर के हमको डर खत्म हो गया। मकानों में अकेले रहते हैं, खाते पीते हैं, अकेले जाते हैं, अकेले सब कुछ करते हुए भी हमको यहां पर फिर क्या है, कोई भी जाना है तो इनको लेके जाना है, उनको लेके, मतलब यहाँ का सिस्टम है वो भी हमको अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर अगर कोई नहीं है तो बाबा के भरोसे के ऊपर हम जाकर के सेवा कर लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमको डिफरेंस लगता है कि यहाँ के बहनों में कि भाई तो उसमें डर है, हम लोगों में डर नहीं है जाने आने का या कुछ भी करने का डर नहीं होता है, कहीं भी हम बेधड़क होकर के चले जाते हैं चाहे रात हो या दिन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सबको जाना चाहिए, सबको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन एक बेधड़क होने से क्या है कि पूरी सिस्टम चेंज हो जाती है अंदर की, अंदर की पूरी सिस्टम ही चेंज होता है, थिंकिंग एकदम चेंज होने से हर चीज का जो है वो थिंकिंग के ऊपर दी, विचारों के ऊपर है। जैसा आप विचार रखेंगे उसी अनुसार होगा, उसी अनुसार आपका एटीट्यूड होगा, तो उसी प्रकार से वृत्ति होगी। उसी प्रकार से अगर हम किसी के साथ में मिलने के लिए जाते हैं, उसका हमारा एटीट्यूड उस आत्मा के प्रति अच्छा होता है, तो जरूर उसका भी रिस्पॉन्ड हमारे प्रति अच्छा होगा। तो अभी तो बाबा ये कहते हैं कि सब लोग लाइट हो जाओ, क्योंकि तीन चीजें हमारे जीवन के अंदर जो साथ साथ हमारी चलती है आत्मा के अंदर जो है, एक अपने सोच जो भी आप सोच करते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अच्छा सोच करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, खराब सोच करेंगे तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। दूसरा फीलिंग, आप खुशी में रहेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, आप दुखी होंगे तो भी आपके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। नहीं, हम आज हम इतना ज्ञान लेने के बाद ये शब्द उच्चारण नहीं कर सकते हैं कि इसके कारण मुझे दुख हो रहा है। अगर हम ये करेंगे तो मतलब कि ज्ञान को समझा ही नहीं है। चाहे कोई कितना भी दुख दे, लेकिन देने वाले तो आप है ना, ले या ना ले तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज तक हम ये ज्ञान में आने के बाद ये नहीं कर सकते उसके कारण मुझे दुख हुआ है, उसके कारण मुझे दुख हुआ है, उसके कारण मैं हर्ट हो गई हूं, ये इंसान नहीं चलता है। क्योंकि जो भी आपकी फीलिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। दुख हो, सुख हो, हैप्पीनेस हो, अनहैप्पीनेस हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा जो है चॉइस, जो भी आप अपने जीवन के लिए अपने लिए चॉइस लेते हैं, चाहे किसके भी प्रेशर में आकर के चॉइस लेंगे, लेकिन आपको उसका भरना पड़ेगा। आपने वाल्मीकि जी की कहानी तो सुनी होगी, वो चोर था पहले बोलते थे, उसकी शादी हुई थी, उसके बच्चे थे, तो एक बार विष्णु भगवान ने आकर के उससे पूछा कि तू इतना पाप करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन उसका आपका कोई शेयर करेगा आपकी जो गलत काम करते हैं। तो वो ना, हाँ मेरी, मैं अपनी वाइफ को खिलाता हूँ, मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, वो भी मेरा शेयर करेंगे जरूर। तो बोला जाके पूछ क्या, तो उसने पूछा, तो वाइफ ने बोला तुम तो मेरे से शादी किया है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खिलाने की, चाहे आप चोरी करो, चाहे आप उधार लेके आओ, चाहे आप कमाई करके लेके आओ, लेकिन जो आप करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। बच्चों ने भी यही कहा कि हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने पैदा किया आपकी ड्यूटी है खाना खिलाने की। तो जो भी हम चॉइस करते हैं किसी की प्रेशर में आकर के, किसी के लिए भी हम चॉइस करते हैं, लेकिन भरना हमको पड़ेगा, उस कर्म का हिसाब किताब हमको भरना पड़ेगा, ये सोच लेना चाहिए। तो हमारी जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और जो चॉइस अपने जीवन में रखते हैं, जो करते हैं, उसकी तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली अपने जीवन के अंदर, तो किसी को भी गुड विशेस देना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी को भी, किसी के प्रति भी मर्सी जो कहते हैं, दया भाव रखना कोई बड़ी बात नहीं है, करुणा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के प्रति जो है क्षमा भाव रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने किसी को अपने जीवन में पकड़ के नहीं रखा है, इसने ऐसा करा मेरे को ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया मेरे को ऐसा हुआ, हमने किसी को पकड़ा नहीं, हमने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और जैसे ही अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टक नहीं हो जाते, हम स्टॉप नहीं होते, हम आगे बढ़ते जाते हैं और दूसरों के प्रति भी गुड विशेस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शुरू के अंदर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब उसका एंड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि थैंक यू बोलते हैं। हमारे पास, मैं जब ज्ञान में आई तो थोड़े लोग हमारे अपोजिशन में थे, जैसे हमारे पिताजी थोड़े अपोजिशन में थे, हमारे भाई भाभी थोड़े अपोजिशन में थे, तो थोड़ा वो लोगों थोड़ा बंधन डालते थे, लेकिन बंधन डालने से हमारा प्यार और बढ़ गया बाबा के प्रति। और आगे बढ़ने के वो प्यार बढ़ने से हम तो एक दिन जाकर के हमारी भाभी को, भाइयों को, इतना हम लोगों को कितना प्यार लगा और अंदर में इतना थैंक्स महसूस हुआ कि आपने थोड़ा बंधन डाला, बहुत अच्छा किया। बंधन नहीं डालते ना मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो आप ऐसा भी हो सकता है, अगर हम अपने को पकड़ के नहीं रखते ना किसी चीज के लिए, तो ऐसा लगता है कि जो बंधन डालने वाली आत्मा है उन्होंने आगे बढ़ाया, पीछे नहीं डाला हमें। और ऐसी फीलिंग आना चाहिए, अभी तो टाइम ऐसा आ गया है कि गुड विशेस कहो, थैंक्स कहो, बाबा ही बाबा करते रहो, कहीं पे भी बाबा के सिवाय तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बाबा बाबा करते रहेंगे तो जीत जाएंगे हम अपने जीवन के अंदर, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है आपके प्रति, और आपकी भी मेरे प्रति होगी ऐसी शुभकामना। हम ऐसा अनुभव करते हैं आपके प्रति भी कि आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं है और मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। किस एरिया में मैं भी परफेक्ट नहीं हूं अभी? ऐसे तो नहीं है कि मैं बड़ी टीचर बन गई तो मैं परफेक्ट हो गई। हमारे भी कोई ऐसे एरिया होंगे जिसमें मैं परफेक्ट नहीं हूं, आपके भी ऐसे कोई एरिया होंगे जिसमें आप परफेक्ट नहीं हैं। तो हम आपके लिए क्षमा भाव रखते हैं, गुड विशेस देते हैं, और आप हमें गुड विशेस और क्षमा भाव रखना है। वीकनेस देख करके उसके प्रति जो है प्यार और रिस्पेक्ट कम नहीं करना है, उसको क्षमा भाव नहीं कहते हैं। जब तक शरीर के अंदर है, बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो सकता है नहीं? जब तक ये पांच तत्वों का शरीर हमारे साथ है, कोई भी विकार किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे को गुड विशेस से मदद करना है। गुड विशेस से मदद करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। ये बाबा के घर में ये विशेषता है कि एवर रेडी रहो, जो भी मुख से निकले वो बोलते जाओ। बाबा कहते कि सोच, एक मुरली में आया था, सोच करके भी बात नहीं करने का। आपकी बातें ऐसी नेचुरल होनी चाहिए जैसे कि लवर बिलवर से बात करते हैं। ऐसे ज्ञान सुनाना है कि लवर बिलवर से जब बात करते हैं उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, उनको प्यार की बातें निकलती जाती है। तो ऐसे हमें आपस में बात करनी है। ओम शांति। इतना ही टाइम है ना, ये खत्म करते हैं 8:15 को।